जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन जारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा শ্যাম সুন্দর রে, জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই, জয় গৌরনিতাই, জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় জয় প্রভুপাদ, ইতাই গৌর প্রেমানন্দে, জয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য স্তোত্র শত শ্রীমদ অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কী, ইস్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర శ్రీమద్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదకి, అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి, నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి, ప్రేమ్ సే కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృందకి, శ్రీ శ్రీ కృష్ణ రాధాకృష్ణ గోప గోపీనాథ్ శ్యామకుండ రాధాకుండ గిరి గోవర్ధన్కి, వ్రజభూమి బృందావన్ ధామికి, పురుషోత్తమ క్షేత్ర జగన్నాథ్పురి ధామికి, గంగామాయి యమునామాయికి, భక్తిదేవి తులసి మహారాణికి, సమవేద భక్త బృందకి, All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీర్యయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగైతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతరం. ఆజకే శ్రీమద్ భాగవతం కక్ష ఆనే చె సబ్కో స్వాగత్ హై. ఆప్ సబ్ లోగ్ వృందావన్ ధామ్ మే ఇతనా పవిత్ర ధామ్ మే ఆయే హై. ఆప్ సబ్ లోగ్ బహుత్ ధన్య హై. ఆప్ సబ్కో మేరా నమస్కార్, మేరా ప్రణామ్ స్వీకార్ కీజియే ఔర్ ముజే ఆశీర్వాద్ కీజియే తాకి మే భగవాన్ కే బారే మే జైసే ప్రభుపాద్ జీ నే ఆదేశ్ దియా హై, ప్రభుపాద్ జీ నే హమే సిఖాయా హై, వైసా హీ హమే ఆప్కో బతానే కా చర్చా కర్నే కా ప్రయాస్ కరే. కృష్ణ तो आज का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक स्कंद 7 श्रीमद् भागवतम अध्याय 11 श्लोक नंबर 35 मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए. यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम् யஸ்யல்லக்ஷணம் ப்ரோக்தம் பும்சோ வர்ணாபிவ்யஞ்சனம் யதன்யத்ராபி த்ருஷ்யேத தத்தேனைவ விநிர்திஷேத் யஸ்யல்லக்ஷணம் ப்ரோக்தம் பும்சோ வர்ணாபிவ்யஞ்சனம் யதன்யத்ராபி த்ருஷ்யேத தத்தேனைவ விநிர்திஷேத் யஸ்யல்லக்ஷணம் ப்ரோக்தம் பும்சோ வர்ணாபிவ்யஞ்சனம் யதன்யத்ராபி த்ருஷ்யேத தத்தேனைவ விநிர்திஷேத் யஸ்யல்லக்ஷணம் ப்ரோக்தம் பும்சோ வர்ணாபிவ்யஞ்சகம் யதன்யத்ராபி த்ருஷ்யேத தத்தேனைவ விநிர்திஷேத் வ்யஞ்சகம் க்ஷணம் ப்ரோக்தம் பும்சோ வர்ணாபிவ்யஞ்சகம் யதன்யத்ராபி த்ருஷ்யேத சப்தார்த்த அனுவாத் ஔர் தாத்பரிய ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜி கே த்வாரா ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி யஸ்ய ஜிஸ்கா யத் ஜோ லக்ஷணம் லக்ஷன் ப்ரோக்தம் கஹே கயே ஊபர் பும்சா மனுஷகே வர்ண அபிவ்யஞ்சகம் விபாஜன் கோ சூசித் கர்னே வாலே பிராமண் க்ஷத்ரி வைஷ் ஷூத்ர் இத்யாதி யத் யதி அந்யத்ர கஹி ஔர் அபி பி த்ருஷ்யேத் தேகா ஜாதா ஹை தத் வ தேன் उस लक्षण से एवा निश्चय ही विनिर्दिशेत उसका नाम धरना चाहिए। यदि कोई उपर्युक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति का क्यों न हो उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को जन्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि आजकल ऐसा ही प्रचलन है किंतु शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भगवद गीता 4:13 में कहा गया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस तरह गुणों तथा कार्यों के अनुसार समाज के चारों विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और लक्षण गुण ब्राह्मण गुण प्राप्त कर ले तो उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म बंधु मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के गुण अर्जित कर ले तो भले ही वह शूद्र कुल में जन्म हो किंतु वह शूद्र नहीं है क्योंकि उसके ब्राह्मण गुण विकसित कर लिए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इन ब्राह्मण गुणों के विकसित करने के लिए हैं। चाहे कोई जिस जाति या कुल में उत्पन्न क्यों न हो, यदि उसमें ब्राह्मण के गुण विकसित हो गए हैं तो उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए और उसे संन्यास आश्रम प्रदान किया जा सकता है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न नहीं होता तब तक वह संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। अतएव किसी व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की उपाधि प्रदान करने के लिए जन्म अनिवार्य लक्षण नहीं है, यह ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य में संगत गुण पाए जाए तो उसमें जन्म के अनुसार उसकी जाति मानी जाए, अन्यथा नहीं। जिसने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं चाहे वह कहीं भी जन्म ले उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी ने शूद्र या चंडाल के गुण विकसित कर लिए हैं तो वह चाहे कहीं भी जन्म हो उसे लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चातुर्वर्ण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಾಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಾಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಾಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ तो आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं जिसके आधार पर प्रभुपाद जाति किधर जन्म हुआ है कैसे जन्म हुआ है उनका माता पिता का जाति क्या है इसको नेग्लेक्ट करते हुए इसको नहीं देखते हुए जिनके अंदर जो गुण चाहिए जो ब्राह्मण के गुण जिनके अंदर विकसित हो चुका है उनको प्रभुपाद जी बिना कोई संशय ब्राह्मण का पदवी दिए हैं पूरा विश्व जो भी देश का हो जो भी रंग का हो उनका माता पिता का जाति कुछ भी हो जैसे प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करके उन्होंने नियमों को पालन करना शुरू कर दिया तो प्रभुपाद बिना कोई डर उनको श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम के अनुसार ब्राह्मण का स्थान दिए हैं इसके पहले ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कोई शूद्र को चंडाल को या मलेच लोगों को ब्राह्मण और फिर संन्यास दीक्षा देके भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेशों को पालन करने का इतना जोरदार प्रचार कोई नहीं किया है तो प्रभुपाद जी जो मार्ग दिखाए हैं वही मार्ग पर हम सब लोग चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और सिद्धांत के अनुगत है जैसे ही सिद्धांत कहा गया है श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता में और चैतन्य चरितामृतम में उस सिद्धांतों को पूरा का पूरा पालन करते हुए प्रभुपाद विश्व के लोगों को अपना जाति अपना कुल को भूलकर भगवान के शरण में आने के लिए बताए हैं तो इधर बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि इंसान का लक्षण उनके माता पिता का जाति क्या था उसके ऊपर हम विचार नहीं करना चाहिए वो दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए उनके अंदर क्या गुण उन्होंने विकसित किया है उसी को ही देखना चाहिए ये पूरा नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के बारे में पूरा सुनने के बाद बहुत बहुत प्रसन्न हुए और नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं, हे नारद मुनि हमें आप बताइए सामान्य जनता कैसे वो आध्यात्मिक में आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होना चाहिए और वर्णाश्रम के बारे में कृपा करके बताइए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ये पूछा था, इससे नारद मुनि बहुत प्रसन्न होके एक एक करके पूरा बताते आते हैं। 30 लक्षण जो इंसान के अंदर आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में शुरुआत में बताए और वर्णाश्रम का पूरा वर्णन करते हुए एक एक वर्ण का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का वर्णन करते हुए डिटेल में आखिरी में अभी पहुंच गए हैं। ये जो मनुष्य का जो गुण विकसित उनके अंदर हुआ है उसी के ऊपर उनको देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके माता पिता क्या वर्ण थे उसके ऊपर निर्धारित नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया टिप्पणी में अपना इसमें बताए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में बताए हैं यही चीज, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन नाय यही कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु हाय। जो कृष्ण के बारे में कृष्ण का तत्व जानते हैं वो ही है गुरु बनने का लायक। गुरु बनना मतलब पहले ब्राह्मण बन के फिर संन्यास दीक्षा ले गुरु बने। कौन है वो? ऐसा नहीं कि वो विप्र ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं। अगर वो कृष्ण के बारे में कृष्ण के तत्व के बारे में जानते नहीं तो वो गुरु बनने का लायक ही नहीं है। वैसा ही न्यासी जो अपने आप को संन्यास स्वीकार करके अपने आप को सन्यासी समझते हैं मगर कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता, कृष्ण के बारे में बात नहीं करता, ऐसा कोई नहीं। वैसा ही अगर कोई शूद्र भगवान के बारे में कृष्ण के तत्व के बारे में पूरा पूरा जानकारी है तो वो गुरु बनने का लायक है। चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे हरिदास ठाकुर को इतना उन्नत पदवी क्या दिए हैं, नामाचार्य, नाम के आचार्य करके उनको बहुत बहुत सम्मान दिए हैं। हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुस्लिम परिवार में जन्म लेना मतलब वो मलेच चंडाल से भी उसमें उस समय में गणन में आता था और सब ब्राह्मण उनको देखते ही कुछ ना कुछ प्रायश्चित करते थे, नहाते थे, कोई आचमन करते थे। ऐसे ऐसे ही इसमें जब वो चैतन्य महाप्रभु का आदेशों को पालन करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया, चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायी बना लिए हैं। ये देखते हुए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांतों को पूरा पूरा समझ के हरे कृष्ण महामंत्र को इतना अच्छा जप करते थे दिन रात और उनको नामाचार्य पदवी दिया गया है, 300,000 नाम जप करते थे। जब मुस्लिम परिवारों ने ये देखा हरिदास ठाकुर ऐसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए और वो तो पूरा का पूरा हरे कृष्ण महामंत्र इतना अच्छा जप कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, इनको इतना गुस्सा आ गया एक एक को, और आके अपना राजा उनके पास जाके शिकायत करते हैं, ये हरिदास जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है जाके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसके ऊपर कुछ इसको दंड दो, पनिशमेंट दीजिए। तो इनको आदेश दिया जाता है कि इसको हर बाजार में पकड़ पकड़ के मारे, जब तक ये नहीं सुधरेगा, जब तक ये नहीं कहेगा कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ दूंगा, तब तक मारते रहो या इसको मार डालो। तो इसको इतना मारने लगे, मगर जब ये हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत मन से, उनका इतना उनका प्राण है हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहा तो उनको कुछ भी थोड़ा भी उनको वो पेन जो बाधा है पीड़ा है उसको नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु उनका पीड़ा को लेते हैं, जिधर भी मारें, कुछ भी मारें, कुछ भी करें, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें मार्ग दिखाए, आदर्श मार्ग। कोई भी जाति हो, जब वो हरे कृष्ण महामंत्र को मन से लेके आदर्शों को जो पालन करना है उसको पालन करते हैं, नियमों को पालन करते हैं, तो उनको ब्राह्मणी मानना चाहिए, उनको हम सम्मान देना चाहिए। और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु इतना सम्मान दिए हैं, जब वो शरीर छोड़ रहे थे उनको अपना दर्शन देके अपना गोदी में बिठा के हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन देखते देखते, उनका मुखारविंद को देखते देखते अपना शरीर त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को हाथ से उठाते हैं, हाथ से उठा के बहुड़ावन से पूरी समुंदर तक लेके आते हैं, और समुंदर में उनको पूरा संस्कार करते हैं, पानी से उनको नहलाते हैं और उनको समाधि पूरा का पूरा। एक्चुअली ये लाइट अगर थोड़ा बंद करते हैं तो थोड़ा सा तो उनको अपना शरीर से उनका शरीर को अपना हाथ से उठा के लेके आते हैं और अच्छा सा पूरा संस्कार करते हैं, उनको नहलाते हैं अपना हाथों से। इतने सारे हजार हजार शिष्य हैं, फिर भी अपने हाथों से उनको इतना सम्मान देके करते हैं। फिर आखिरी में समाधि वो पूरा अपने नेत्रों से आंसू बह रहा है, हे हरिदास तुम हमको छोड़ के चले गए हो और तुम्हारा स्थान और कोई ग्रहण नहीं कर सकता, तुम्हारा इतना उन्नत स्थान है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ननाया, ये कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। वैसा ही कबीरदास भी बताए हैं, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का फड़ा रहने दो म्यान। जब तलवार को खरीद रहे हैं, तलवार को देख रहे हैं, तलवार को गुणों को देखो, जो म्यान है जिसके ऊपर कवरिंग है उसको क्या देखते हो। ये सिद्धांत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम ये भूल जाते हैं तो हम बहुत वैष्णव अपराध करने का चांस होता है। हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हम गुणों को ही देखना चाहिए। एक गुरु अपना शिष्यों को बहुत अच्छा शिष्य शिक्षा दे रहे थे। ये शिष्य बहुत अच्छा वेदों का पारायण करते हैं और मंत्र का बहुत स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। दूर एक बकरी चलाने वाला भी सुनते रहता है और वो भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। सब शिष्य उसको देख के हंसते हैं, ये तो अनपढ़ गवार है, इसको एक मंत्र भी ठीक से उच्चारण करना नहीं आता, इसको तो एक श्लोक भी मुंह से बोलना नहीं आता, कुछ भी करो। उसको देख के मजाक उड़ाते हैं। उनका गुरु देखते हुए अपना शिष्य बिगड़ रहे हैं, इनको थोड़ा सिखाना चाहिए और कुछ। तो एक बार एकादशी हुआ, गुरु अपने शिष्यों को बिठा के बोलते हैं आज एकादशी है, सब लोगों को मैं एक एक केला दे रहा हूं, एक केला ले जाइए और आप ऐसे खाइए जिधर से कोई आपको पहचान ना पाए, देख ना पाए, और कल चर्चा करेंगे आप कैसे खाए, कितना इंटेलिजेंस बुद्धिमान बन के अपने आप को छुपाया मुझे बताना। सबको एक एक केला दे दिए और वो बकरी चलाने वाला को भी, हे भैया तुम भी इधर आ जाओ, ये लो ये केला, तुम भी ऐसे खाना जिधर कोई आपको देख ना पाए। तो एक एक अपना प्रणाली बनाए हैं। एक आदमी नहाते नहाते डुबकी मारा केला को लेके, केला अंदर छिलका पानी के नीचे, वाह कोई नहीं देखा। दूसरा केला रखा, पढ़ाई कर रहा है, इधर उधर देखा कोई नहीं है, मेज के नीचे गया, छुपाया अपने आप को, केला खा लिया, छिलका ले जाके दूर 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 फेंका। और एक ये पौधे के पीछे गया, हाँ इधर अच्छा है, कोई देखने वाला भी नहीं, इसके अंदर केला खा लिया। ऐसे हर एक अपना अपना प्रणाली के अनुसार केला खा लिए। अगला दिन गुरु के पास आए, गुरु ने पूछा हाँ बताओ तुम केला खा लिया, हाँ जी हाँ गुरु जी, अच्छा कैसे खाया, गुरु जी मैं ऐसे ऐसे पानी में डुबकी मारा और खा लिया, अरे कितना बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा बुद्धिमान, अच्छा तुम कैसे खाए, मैं ऐसे खाया ऐसे खाया ऐसे खाया, सब लोग कहे अच्छा आप सब लोग बहुत चतुर है, मगर ये क्या है, एक केला एक ही केला, एक केला ये बच गया क्या, कौन लाके इधर रखा है, हमने सब केला सबको दे दिया है, किसका है, कौन नहीं खाया। तो दूर से वो बकरी चलाने वाला कहता है, ओ महाराज मैंने केला नहीं खाया। सब शिष्य उसको देख के मजाक उड़ाते हैं, गुरुजी जो आपने कहा है उसको समझ में नहीं आया। बकरी चलाने वाला आके कहता है, नहीं नहीं मुझे समझ में आया कि केला को ऐसे खाना चाहिए जिधर कोई ना देखे, मैं तो प्रयास किया, जिधर भी जाता हूँ जैसे गुरुजी ने कहा था कि सबके अंदर भगवान है और मेरे अंदर भी तो भगवान होगा, उसको जोड़ के मैं कैसे खा सकता हूँ, वो तो देख रहा है, हर जीव के अंदर भगवान है, तो हर पेड़ पौधे में भी भगवान है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, मगर गुरुजी ने कहा है कि हर जीव में भगवान है, वो तो मुझे देख रहे हैं। इतने सारा जीवों को मैं छोड़ के अकेला खाऊं तो भी मेरे अंदर आपने कहा है कि भगवान है, ये सही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपने कहा है भगवान तो है, तो मैं कैसे कहूं, मैं तो नहीं खा पाया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इधर रख दिया। गुरु ने कहते हैं वाशिष, तुम हो असली ब्राह्मण, तुम हो असली ज्ञान को समुपार्जन करने का लायक। इनको इतने दिन पढ़ाए हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं, वेदों को ऐसे पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा पंडित है, मगर असली ज्ञान इनके दिमाग के अंदर गया नहीं। तुम पढ़ नहीं पाते हो, नियमों को थोड़ा पालन किया नहीं किया, ऊपर नीचे भी होता है, फिर भी तुमने जो शास्त्रों का सार ग्रहण करना है तुमने ग्रहण कर लिया। सब शिष्य बड़ा दुखी होते हैं और कहते हैं हमें क्षमा करो। तो सिद्धांत यही है, जो ब्राह्मण का लक्षण भगवान के भक्ति से प्राप्त होता है। जितना भी पढ़े, श्लोकों को उच्चारण करें, 700 श्लोक भगवद गीता को पूरा का पूरा कंठस्थ करके बताएं, पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम कंठस्थ करके बोले, मगर असली चीज जो बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में भगवद गीता को, अगर हमारे अंदर हम ग्रहण नहीं कर पाए तो ये पूरा किसी काम का नहीं। नारद और मोची का कहानी प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं, एक बार हम इसमें देखें। नारद मुनि पूरा घूमते घूमते, ब्रह्मांड को घूमते घूमते आ गए इस धरती पर। देखते हैं एक ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण से बातचीत करते हैं और ब्राह्मण से विदा लेते पूछते हैं, ब्राह्मण मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान को दर्शन करने के लिए, आपको कुछ पूछना है क्या? ये ब्राह्मण तुरंत बोलते हैं, देखिए मैं तो इतना निष्ठावान हूँ, मैं हर दिन बिना अग्नि बिना हवन तो मेरा भोजन होता ही नहीं, पूरा नियमों को पालन करता हूँ, वेदों का पारायण करता हूँ, मैं जरूर वैकुंठ धाम तो पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा, फिर भी आप एक बार भगवान से पूछ लीजिए मैं कब वैकुंठ धाम को पहुँचूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है जरूर। तो नारद मुनि निकल पड़े, निकल के जा रहे थे, एक मोची हरे कृष्णा भगवान का नाम लेते लेते चप्पल सिलता है, अपना पेटी से भगवान का फोटो निकाल के पेड़ को लगाता है और भगवान का नाम लेते लेते चप्पल का सिलना, चप्पल का काम करता है। ये देखते देखते उनके पास आ गए, हे मोची मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, हाँ कुछ पूछना है क्या भगवान से? ये कहते मैं तो मोची हूँ, हाँ कोई मेरा कुछ पुण्य कार्य है ही नहीं, फिर भी आप पूछ लीजिए मैं भगवत धाम जाने का कब मैं एक्चुअली रेडी हो जाऊँगा, कब मैं इसका अर्हता मेरे अंदर आ जाएगी, कब मैं जा सकता हूँ? कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, आके बताऊँगा। फिर निकल गए नारद मुनि, आ गए पहुँच गए भगवान से, प्रार्थना करते हैं और बताते हैं, हे भगवान ऐसे दो लोगों को मैंने रास्ते में देखा हूँ, एक ये ब्राह्मण था बहुत निष्ठा से पूजा पाठ कर रहा है, और ये मोची वो भी मुझे लगा बहुत आपका ध्यान कर रहा है, वो पूछ रहे हैं कब आपके धाम पहुंच जाएंगे थोड़ा बता दीजिए। भगवान बताते हैं ये जो है ना ये ब्रह्मांड अभी नहीं, बहुत करोड़ 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 जन्मों के बाद उनका उद्धार होगा, और ये मोची यही जन्म में उद्धार होगा। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान ये तो इतना बड़ा भक्त है ब्राह्मण, और आप कह रहे हैं कि करोड़ करोड़ जन्मों के बाद आएगा, और ये मोची ये तो कुछ नहीं कर रहा है, चप्पल के साथ आपका फोटो लेके आता है और अपना पेटी से बाहर निकलता है और पेड़ के ऊपर टंगाता है और हरे कृष्णा कर रहा है, इतना ही कर रहा है। भगवान बताते हैं देखो वो लोग आपसे पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूं, तो बताओ कि मैं हाथी को सुई के नोक से इधर से उधर, उधर से इधर निकाल रहा हूं। फिर जो जवाब वो देते हैं तुमको समझ में आएगा वो क्या स्तर पर है। तो नारद मुनि निकल पड़े, तो नारद मुनि बताते हैं देखो भाई मैं तो भगवान को यही पूछा था आपका भगवत धाम आना कब होगा, भगवान ने बताया बहुत टाइम लगेगा, करोड़ करोड़ जन्म लगेगा। बहुत गुस्सा आ जाता है ये ब्राह्मण को, तुम क्या समझ रहे हो, तुम भगवान को देखा है वो या और कोई हो, अगर तुम भगवान को देखा है तो बताओ भगवान को भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि बताते हैं देखो जब मैं भगवान का दर्शन लिया लक्ष्मी जी भी थी और ये तो सुई के नोक से भगवान हाथी को निकाल रहे हैं इससे ही बाहर, बाहर से अंदर, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्या अनपढ़ मूर्ख हूं इतना भी नहीं समझ सकता हूं, सुई का नोक हाथी इतना बड़ा जा सकता है क्या, कोई निकाल सकते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो। नारद मुनि समझ लिए इसको भगवान के ऊपर विश्वास कितना है, तो नारद मुनि ने कहा मैं जो बोलना है आपसे कह दिया, मैं जा रहा हूं भाई, नारायण नारायण हरे कृष्णा, चले गया। फिर आ गया इधर मोची के पास, मोची भी वही पूछते हैं बताते हैं देखो मैंने गया था उधर, मैंने देखा भगवान सुई के नोक से हाथी को निकाल रहे हैं। कहते हैं अरे मेरा भगवान इतना कृपालु है, इतना चमत्कार करते हैं, सुई के नोक से एक क्या दो दो हाथी भी आराम से निकाल सकते हैं, एक इतना बड़ा पेड़ बनने का शक्ति छोटा बीज में भगवान रखा है, हम समझ नहीं पाते हैं वो ये छोटा बीज इतना बड़ा पेड़ बनने का शक्ति इसके अंदर है, तो बड़ा बड़ा हाथी छोटी सी सुई के नोक से क्यों भगवान नहीं निकाल सकते हैं, एक नहीं दो दो भी आराम से चले जाएगा, मेरा भगवान इतना शक्तिशाली है कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के धाम तुम यही जन्म में जा सकते हो जब बताया गया, बड़ा खुशी से नाचते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जस्ट ड्रेस पहनने से या कुछ मंत्र पढ़ने से, हवन करने से, या कुछ वेदों का पारायण या कुछ अलग अलग तरीका जो अपनाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, इससे कोई फायदा सच्ची में नहीं होगा। हमारे अंदर क्या गुण आ चुका है, हमारे अंदर कितना भक्ति आई है, वो मेन चीज है। उडुपी का कृष्ण के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ये उडुपी कृष्ण जो श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने स्थापना किया है, मध्वाचार्य जो हमारा पहले गुरु है जिनके माध्यम से कृष्ण के बारे में जो ज्ञान हमारे परंपरा में आ रहा है। मध्वाचार्य जी कृष्ण को स्थापन कर दिए हैं, ईस्ट पूर्व मुख कृष्ण, जो भी विग्रह है पूर्व के मुख रखते हैं, वैसा ही कृष्ण को पूर्व के मुख के मध्वाचार्य जी ने स्थापना किया है। और उधर मध्वाचार्य जी के बाद 300 400 साल के बाद ऐसे वातावरण हो गया था कि मंदिरों में जो कम कुल वाले ब्राह्मण नहीं हुआ, चंडालों को शूद्रों को अंदर प्रवेश नहीं करवाते थे, वो बाहर ही रहना, बाहर से ही प्रणाम करके चले जाना। तो इस मंदिर में भी ऐसा ही हो रहा था। भगवान इतना सुंदर, महाराज बड़े बड़े राजा आके सोना हाँ हीरे हीरों से बना हुआ अलग अलग वस्त्र, भगवान का देखिए पूरा का पूरा वज्र है इसका, पूरा हीरों से भरा हुआ कृष्ण, ये देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। एक जो भी आते हैं बाहर से उनको देखना पड़ता है, जो ब्राह्मण या उन्नत वर्ग का नहीं। ऐसी अवस्था में ये था, इनका नाम है कनकदास, इनको ये बाहर है, बाहर का वरंडा, ये खिड़की से बाहर सी, बाहर आंगन में भी नहीं, पूरा बाहर से देखना पड़ता था। मगर भगवान दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि भगवान पूरब और दीवार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये बड़ा दुखी होता था। एक बार सब लोग आके बोलते हैं, भगवान इतना बढ़िया अलंकार हुआ है, हीरे मोती का भगवान का अलंकरण इतना अच्छा है, भगवान का सुंदर मुख इतना प्रकाशमान है। तो ये कनकदास भगवान के वो खिड़की में जाके देखते हैं, दीवार दिख रहा है और भगवान उस तरफ मुंह किए हैं तो कुछ भी दिखाया नहीं दे रहा है। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे दर्शन दो, मैं आपका इतना सुंदर चेहरा को देखना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे दर्शन दो। बहुत प्रसिद्ध गाना जो कन्नड़ में गाते हैं, गाने के बाद भगवान जो उस तरफ मुंह था वो टर्न होके इस तरफ हो जाते हैं और दीवार जो था वो सच्ची में गिर जाता है, ईंट पूरा गिर जाता है और भगवान का दर्शन इधर से करते हैं, इधर से देखते हैं, तब दीवार भी गिर गया और भगवान इस तरफ मोड़ गए। ये देखते हुए सब ब्राह्मण इनको बहुत बहुत इज्जत देते हैं, क्षमा मांगते हैं। आज के दिन में आज भी अगर हम भगवान को दर्शन करना है तो इसी के द्वारा दर्शन करना है। मेन एंट्रेंस उस तरफ है, उधर से पुजारी लोग अंदर जाते हैं, मगर कृष्ण उस तरफ नहीं, इस तरफ मुंह किए हैं, तो इधर आके पूजा पाठ करते हैं। हम देखने के लिए ये खिड़की है, ये खिड़की से ही आंखें अंदर रख के देखना पड़ता है। तो ये उड़पी जो है ये वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी, अरेबियन समुंदर का पास में उस तरफ अभी भी हम देख सकते हैं, बहुत 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 अलंकार, पूरा सोना सोना ही, असली सोना, बढ़िया अलंकार करते हैं, बढ़िया प्रसाद। जब कनकदास का वृत्तांत होने के बाद सबको भोजन, 20,000 के लोग रोज आके भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं कृष्ण को अर्पण करके। बहुत बड़ा मंदिर, क्योंकि हजार सालों से है उधर, इतना बड़ा बड़ा भोजन का हॉल बनाया गया है, लोग आते हैं प्रसाद लेते रहते हैं सब लोग, कभी ना कभी जाके देखना चाहिए। देखिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो है, हम ऐसा ही जाके वो खिड़की के द्वारा देखना पड़ता है, जो दीवार गिर गया है वो दीवार में खिड़की लगाए हैं, उधर से ही हम भगवान का कृष्ण का दर्शन लेना है। तो ये जाति का और ये जो भी हम जातपात करने का जो है हमारे अंदर, ये बहुत कूड़ा, ये कूड़ा अनेक प्रकार का कूड़ा हमारे दिमाग में आके जम जाता है। ये इस जन्म का नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये कूड़ा हमारा दिमाग के अंदर है। इसको साफ करने का एक ही विधि है, एक ही विधि है, हरे कृष्ण महामंत्र को बार बार जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से ही हमारा ये दिमाग के अंदर, मन के अंदर जो खलमश भरा पड़ा है जन्म जन्मों से, वो एक एक करके निकल जाएगा और हमारा मन साफ हो जाएगा। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली लेना चाहिए। तो आज के पाठ में हम यही चर्चा किया है, कोई भी इंसान का जन्म, जन्म से उनका माता पिता क्या वर्ण में थे उसको हम देखना नहीं चाहिए, उनके अंदर क्या गुण विकसित हुआ है वो ही हम देखना चाहिए। हम ईमानदारी से ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य तथा शूद्रों को लक्षण को अपने आप चेक करना चाहिए, मैं कौन सा वर्ण में हूँ, क्या मेरे अंदर ब्राह्मण का वर्ण पूरा का पूरा ठीक से आ चुका है। जैसे हमने पिछले 10 दिन से चर्चा किया है, इस चैप्टर इस अध्याय में पूरा वर्णन हो चुका है, वैसा ही हमारे मेरे अंदर कितना तक वो ब्राह्मण का गुण आ चुका है। साधारण मनुष्य में जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए 30 गुण बताया गया है, वो 30 गुणों में मेरे अंदर कितना आया है, हम अपने आप को चेक करना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जन्म से नहीं, गुण से आदमी का वर्ण को निश्चित करना चाहिए, यही हम चर्चा किया है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है बताने के लिए, कुछ करेक्ट करने का, कुछ गलती हो गया है तो गलती को सुधारने का कुछ आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न प्रभु? अगर किसी के पास प्रश्न नहीं है तो हम इधर वाणी का विराम देते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की। ठीक है।